ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इति सुषुमा निर्बन्धं तपः परमा आस्थिता विधत्स्व अनन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर। इति सुश्रुमा निर्बन्धं तपः परमवास्थितः विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर। इति सुश्रुमा निर्बन्धं तपः परमवास्थितः विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर। इति इस प्रकार सुश्रुमा हमने सुना है, निर्बन्धं प्रबल संकल्प, तपा तपस्या, परमं अत्यंत कठोर, आस्थिता स्थित, विधत्स्व कृपया कार्यवाही करें, अनंतरम जल्दी से जल्दी, युक्तम उपयुक्त, स्वयं अपने से, स्वयं त्रिभुवन ईश्वर, हे तीनों संसार के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकश्यपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों जगतों के स्वामी हैं, आप जैसा उचित समझें वैसा अभिलंब करें। तात्पर्य, भौतिक जगत में स्वामी अपने नौकर को कोई एक पद प्रदान करता है, किंतु वह सदैव योजना बनाता रहता है कि किस प्रकार अपने स्वामी का पद छीन ले। इतिहास में इसके अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं। विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के शासन काल में अनेक नौकरों ने षड्यंत्र द्वारा अपने स्वामियों के पद हथिया लिए। चैतन्य साहित्य से यह पता चलता है कि सुबुद्धि राय नामक एक बड़े जमींदार ने एक मुसलमान लड़के को नौकर के रूप में रखा। वह इस लड़के को अपने पुत्र की तरह मानते थे और जब वह कभी कुछ गलती करता चुराता तो उसका स्वामी उसे दंड देने के लिए उसे बेंत से मारते थे। इससे उस लड़के की पीठ पर एक निशान बन गया था। बाद में जब वह लड़का कुटिल उपायों से हुसैन शाह नामक से बंगाल का नवाब बन गया तो एक दिन उसकी पत्नी ने इस निशान को देखा और इसके विषय में पूछा। नवाब ने उत्तर दिया कि बचपन में वह सुबुद्धि राय का नौकर था और उन्होंने किसी उपद्रव के लिए उसे दंड दिया था। यह सुनकर नवाब की पत्नी क्रोध हो गई और उसने अपने पति से अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय की हत्या कर दे, किंतु नवाब हुसैन शाह सुबुद्धि राय का अत्यंत कृतज्ञ था, अतः उसने हत्या करने से मना कर दिया। किंतु जब उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय को मुसलमान बना ले तो नवाब राजी हो गया। उसने अपने सुराही से जल निकाल कर सुबुद्धि राय को छिड़क दिया और घोषित कर दिया कि सुबुद्धि राय मुसलमान हो गया है। बात यह है कि यही नवाब पहले से बुद्धि राय का सामान्य नौकर था, किंतु जैन के न प्रकारे न वह बंगाल के नवाब का श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में सक्षम रहा। ऐसा है यह भौतिक संसार, प्रत्येक व्यक्ति नाना प्रकार की युक्तियों से स्वामी बनना चाहता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास है, इस पद्धति पर चलकर प्रत्येक जीव भले ही इंद्रियों का दास क्यों न हो, संपूर्ण संसार का स्वामी बनना चाहता है। हिरण्यकश्यपु इसका ज्वलंत उदाहरण था और देवताओं ने उसके इन मंतव्यों की सूचना ब्रह्मा को दी। श्रील प्रभुपाद की तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के तीसरे अध्याय से है और यह देवताओं की युक्ति है ब्रह्मा जी के समक्ष। प्रसंग स्पष्ट है, मंदराचल की घाटियों में हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए बैठा है, बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। केवल आसन पर सुखपूर्वक बैठ कर नहीं, खड़ा होकर तपस्या करने लगा और एक अंगुष्ट पर खड़ा होकर उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। इस अध्याय में शुरू से ही उसकी तपस्या का वर्णन है। सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत के अनुसार इसमें उत्ति का वर्णन है। उत्ति भागवत में 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग, स्थान, मनमंत्र, ईशान्य कथा, निरोध, उक्ति, उतय। तो सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणोतय मनवंतरेशानो कथा निरोधो मुक्ति राश्रय। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहला श्लोक है जिसमें भागवत के शीर्षक का वर्णन किया गया है। भागवत में 10 विषयों का वर्णन है, सर्व विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो सबका परिभाषा भी दिया गया है, मैं उन विषयों को बतलाने नहीं जा रहा हूँ, उसमें से यह बता रहा हूँ कि एक उति है। तो उति की परिभाषा सूत गोस्वामी देते हैं उसी अध्याय में, उतय कर्म वासना। उति का अर्थ है कर्म वासना। जीव के अंदर कुछ करने की लालसा है, एक होता है भोग वासना, एक कर्म वासना। कुछ भोगने की इच्छा है और कुछ करने की इच्छा है, तो वही भोग वासना ही कर्म वासना के रूप में प्रेरित हो जाता है। तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि वासना 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सद वासना, दूसरे को असद वासना और तीसरा है मिक्स वासना, मिश्र। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, मिश्र। तो सद वासना जो केवल श्री भगवान के लिए जिसकी वासना हो, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता, उनके विषय में सुनना, बोलना, चिंतन करना, जिसको अच्छा लगता हो उसको सद वासना। सद का मतलब होता है परमानेंट, स्थाई, सनातन, नित्य, शाश्वत, भगवान है। तो भगवान के प्रति वो वासना भी परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, तो इसको सद वासना कहते हैं। और ठीक विपरीत कृष्णेतर विषय भोगों की जो वासना है उसको असद वासना कहते हैं। ठीक विपरीत जो टेम्पोररी है, अस्थाई है, दुखदाई है, क्लेशमय है, इसको असद वासना कहते हैं। और तीसरा कुछ सद वासना, कुछ असद वासना, दोनों मिक्स। तो पूरे संसार में इस 3 वासनाओं से युक्त लोग हैं, कुछ सद वासना वाले हैं, कुछ असद वासना वाले, कुछ मिश्र वासना। तो इस सप्तम स्कंद में इस उति का वर्णन है, उतय कर्म वासना, पूरा सप्तम स्कंद। तो 5-5 अध्याय में 3 वासनाओं का वर्णन हुआ है। तो सबसे पहले असद वासना का नेतृत्व हिरण्यकश्यपु कर रहा है, 5 अध्यायों में कृष्णेतर वासनाओं का विशद वर्णन है। कृष्ण नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, संसार का भोग, उम्र बल पौरुष प्रतिष्ठा जो भी संसार की उपलब्धि है कृष्णेतर विषय उसको असद वासना कहते हैं। तो असद वासनाओं का वर्णन 5 अध्याय में 1 से 5 और बीच में सद वासना का वर्णन बीच में रखा गया है दोनों तरफ छिपा कर। तो सद वासना प्रहलाद महाराज की उत्कृष्ट कृष्ण भावना का वर्णन है 6 से 10 तक और इसके बाद 11 से 15 तक मिक्स वासना हम लोगों की तरफ कोई ब्रह्मचारी कोई गृहस्थ सन्यासी या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सबके ओर से महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करते हैं। संपूर्ण सप्तम स्कंद के वक्ता हैं देवर्षि नारद और श्रोता है महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर ने पहले असद वासना सद वासना के विषय में सुन लिया तब अब बीच वालों के विषय में पूछते हैं मिक्स वालों के विषय में स्त्री धर्म क्या है ब्रह्मचारी का धर्म क्या है गृहस्थ का सन्यासी का वानप्रस्थी का। ये वर्ण और आश्रम नैमित्तिक धर्म है नित्य धर्म नहीं है एक परिवर्तनशील है। नित्य धर्म में प्रहलाद महाराज स्थित थे और नित्य धर्म सनातन है शाश्वत है इसको कभी भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत इस जीवन के बाद भी जो काल और परिस्थिति से बदले ना हरि सर्वत्र सर्वदा भारत में अमेरिका में इंग्लैंड में या स्वर्ग में वैकुंठ में जो एक ही धर्म का पालन हो उसको कहते हैं नित्य धर्म। बचपन में माता के गर्भ में बाल्यावस्था में जवानी में बुढ़ापा में जो सब समय किया जा सकता है सब जगह किया जा सकता है किसी काल और परिस्थिति से जिसमें कोई चेंजेज ना हो उसको सनातन धर्म कहते हैं। और ये वर्ण और आश्रम काल और परिस्थिति से बदलते हैं। जो अभी विद्यार्थी है उसको स्कूल के लिए कुछ धर्म है पढ़ना लिखना अपना टास्क पूरा करना जब वो टीचर हो जाएगा तो उसका धर्म दूसरा हो जाएगा या स्कूल छोड़ देगा तो उसका धर्म बदल जाएगा। बेटा का धर्म दूसरा है बाप का धर्म दूसरा है बदलने वाला है। तो ये सारे धर्म नैमित्तिक है किसी कारण से करना पड़ता है तो किसी निमित्त से जिन धर्मों का पालन करना पड़ता है उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं देह धर्म कहते हैं। जैसे देह परिवर्तनशील है वैसे धर्म भी परिवर्तनशील है। तो नैमित्तिक धर्म का भी अंत में जिज्ञासा किया है। तो इसीलिए भगवान इन नैमित्तिक धर्मों के विषय में कह दिए कि इसको पालन करो या मत करो कोई बात नहीं सर्वधर्मान परित्यजा सारे कर्तव्यों को छोड़ दो छूटने वाला है नहीं छोड़ोगे तब भी छूट जाएगा। कोई ब्रह्मचारी विवाह किया तो सारा ब्रह्मचर्य नियम खत्म पूरा बदल जाएगा। तो धर्म तो छूटने वाला है जो वानप्रस्थ में गया तो गृहस्थ का धर्म छूटने वाला संन्यास लिया तो तीनों छूटने वाला है। तो या मृत्यु को प्राप्त किया तो सब छूट जाएगा। तो ये छूटने वाले धर्मों से टेम्पोररी लाभ है जब तक हम हैं और इन धर्मों में भी कोई ऑप्शन नहीं कि करना है एकदम नितांत आवश्यक है कृष्ण भक्ति। नित्य धर्म तो सबके साथ लगा है चाहे बालक हो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो। चैतन्य महाप्रभु तो चौंका देने वाली बात कह दिए हैं सनातन गोस्वामी को चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म करियाऊ से ही रो रो पड़ी मजे। चारों धर्म का पालन ठीक ठीक करने वाला चारी वर्णाश्रमी वर्ण और आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 8 कैटेगरी हो गया 4 वर्ण और 4 आश्रम। अगर ठीक ठीक अपने धर्मों का पालन करते हैं बिना कमी के बिना त्रुटि के फिर भी नरक जाएंगे। फर्स्ट क्लास ब्रह्मचर्य के पालन करने वाला भी नरक जाएगा फर्स्ट क्लास संन्यास का पालन करने वाला भी नरक जाएगा। क्यों कि यदि कृष्ण नहीं भजे यदि वो कृष्ण भजन नहीं किया केवल कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो नरक चला जाएगा। कृष्ण भजन नितांत आवश्यक है। तो जब कृष्ण भजन नितांत आवश्यक है तो इन धर्मों के चक्कर में क्यों टाइम बर्बाद करें। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज मामकम शरणम व्रज। यदि कृष्ण नहीं भजे, सब एक है कि कृष्ण का भजन नहीं किया तो उन धर्माचरणों से कोई लाभ नहीं। स्वधर्म करियाओ सही रो रो पड़ी मजे, अपने धर्म का पालन करने के बाद भी नरक जाएगा। इसलिए नित्य धर्म का पालन करना चाहिए, प्रहलाद महाराज ने किया। तो अभी हम लोग हिरण्यकश्यपु के असत धर्म की चर्चा करेंगे। असत धर्म पड़ा हुआ है अध्याय के शुरू से ही। आप देवर्षि नारद बोल रहे हैं कि हे राजन, वह अमरता को प्राप्त करने के लिए मंदराचल की घाटियों में गया और बाह को ऊपर उठा करके तपस्या करना प्रारंभ किया। पदंगुष्ट पर, अपने पैर के बाएं पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर जटा को फैला दिया, ऐसा उसकी जटाएं चमक रही थी जैसे सूर्य का प्रकाश। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद वो कठिन तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते उसके सिर से आग निकलने लगी और पूरे क्षेत्र को जलाने लगा। आकाश धुआं में फैल गया, अत्यंत सारा लोक तप्त होने लगा, उसको देखा नहीं जा सकता था। तो उसकी ये स्थिति को देखकर वो सारा विश्व झुलस रहा है उसकी तपस्या से, तो देवता लोग घबरा गए। उनका लोक भी स्वर्ग आदि पर भी आँच जाने लगा। तो देवता लोग अपने लोक को छोड़कर ब्रह्मा जी के लोक में गए, सबसे ऊपर। ब्रह्मांड के सबसे ऊपर लोक है सत्य लोक। पृथ्वी के ऊपर छह लोक है, स्वर्ग इसके ऊपर, और भी जन लोक, तप लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, इसके बाद सत्य लोक। सबसे ऊपर सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। सब मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक है, लेकिन हम लोग सुनते हैं त्रिलोक त्रिलोक त्रिभुवन, ऐसा क्यों? जब 14 है तो 14 कहना चाहिए। तो शॉर्टकट सबको बहुत पसंद है, ऊपर का लोक, नीचे का लोक और बीच का लोक, इसलिए त्रिलोक कह देते हैं। ऊपर 6 है, पृथ्वी को लेकर 7, और पृथ्वी से नीचे 7 है, तल तलातल अतल बीतल सुतल पताल इति, नीचे 7। और पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग जन लोक तप लोक महर लोक सतलोक इत्यादि। तो इन 14 लोकों को त्रिलोक कहा जाता है, या त्रिभुवन कहते हैं, 14 भुवन को ही त्रिभुवन कह देते हैं। तो ऊपर के लोक भी जलने लगा, वे लोग सबसे ऊपर सत्य लोक में गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। और वो भगवान की आराधना नहीं कर रहा था, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था। तो तस्यायम किल संकल्पो चर्तो दुश्चरम तपः सुयताम की न विदितस तथा तवात तथापि निवेदितम। देवता लोग कह रहे हैं कि हे नाथ, हे ब्रह्मा जी, हम समझ रहे हैं कि आप जानते हैं, आपसे छिपा नहीं है कि वो क्यों तपस्या कर रहा है, उसका संकल्प आप जानते हैं, फिर भी हमारी इतनी त्वरा है कि हम बतलाना चाहते हैं। हो सकता है आप ध्यान न दें, या कभी कभी सेवकों से स्वामी इतना प्रसन्न हो जाता है कि आंख बंद कर लेता है, कुछ विचार ही नहीं करता कि वो सेवक क्यों ऐसा कह रहा है। सेवा सेवलाइज रहता है। अब भाई सेवक मांग दिया तो चलो पूरा कर दे, वो क्यों मांग रहा है इस पर विचार ही नहीं करते। तो आप यद्यपि उसके संकल्प को जानते हैं, फिर भी हम बताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका सेवक है। आपका सेवक है, इसलिए आप कम से कम कंफर्म रहिए कि वो क्या चाहता है। हो सकता है कि आपको पता ना हो, अनजान में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए ध्यान दीजिए, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। यथापि अथापि निवेदितम, मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, आपको विदित पता है, फिर भी हम बताना चाहते हैं। विदिता का मतलब, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो चाहेंगे तो जान जाएंगे, आप समर्थ व्यक्ति हैं। शुरू में तो नहीं जानते हैं कि वो क्या चाहता है, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि वो क्या चाहता है और क्यों तपस्या कर रहा है। उसका संकल्प इतना दुष्ट तप के लिए क्यों है? शिष्ट्वा चराचर मिदम तप योग समाधिना अध्यास्ते सब धिष्णेभ्य परमेष्टि निजासनम। तो ब्रह्मा जी को निवेदन कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ सुपर व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं और उनका लोक सबसे श्रेष्ठ है। तो वह सोच रहा है कि यह लोक कैसे प्राप्त हुआ, ये तपस्या करके समाधि में भगवान को संतुष्ट करके ये लोक प्राप्त हुआ है। आध्यास्ते सब धिष्णेभ्य परमेष्टि निजासनम, ये परमेष्टि ब्रह्मा का जो आसन मिला है वह सबसे बड़े पूज्य देवता बने हैं। और ये क्यों बने हैं, क्योंकि तपस्या करके। तद अहम वर्धमाने न तप योग समाधिना, मैं भी वैसा तपस्या करूँगा, मैं किसी माने में कम कैसे हूँ ब्रह्मा से, मैं भी तपस्या करूँगा, योग शक्ति प्राप्त करूँगा। तो प्रश्न होगा कि अरे ब्रह्मा का उम्र तो बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी रन करता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युग जो है महाजुग, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार राउंड कर जाता है, 1000 बार ब्रह्मा के एक दिन में, और उतना ही बड़ी रात्रि होती है, और वैसे दिन रात से 30 दिन का एक महीना और 12 महीना का एक साल, और वैसे साल से 100 साल ब्रह्मा अपने पद पर बने रहते हैं, जिनको परार्ध कहते हैं, दिव परार्ध, दो परार्ध। इतना लंबा उम्र है तो ब्रह्मा के पास तो काफी टाइम था, लाखों वर्ष तपस्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो इन्हें कस्पु संकल्प बनाया है कि एक जन्म नहीं होगा तो कई जन्म तक करूंगा, लेकिन ब्रह्मा का पद प्राप्त करना है। कुछ भी हो जाएगा मैं प्रयास करूंगा, वह स्थान प्राप्त करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। मतलब ये आपका भजन करके ही आपको आउट करना चाहता है, आपको हटाना चाहता है, आपसे भी बढ़कर पद चाहता है। और इसके मन में एक बात है कि अन्य इदम विधात से हम यथा पूर्वम ममोजसा, सारे ब्रह्मांड का संविधान फाड़ दूंगा, ब्रह्मा के अनुसार नहीं चलेगा, विधि तो ब्रह्मा है ना जो बनाए, क्या ब्रह्मा ललाट में लिखे, हे विधि हे ब्रह्मा, विधि का विधान मिटाया नहीं जा सकता, ऐसे कहते हैं ना। तो जो सारे लोगों का भाग्य रेखा ब्रह्मा बनाते हैं वो मैं बनाऊंगा, और सारा ब्रह्मा का संविधान फाड़ दूंगा, स्वयं अब बनाऊंगा कि मन नहीं काल निर्धोतई। और उसकी देखिए असत वासना से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छा चीज दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और न समझ में आता है कुछ नहीं। कह रहा है कि काल के प्रभाव में पड़ने वाले कल्पांते वैष्णवादि भी, जो वैष्णव लोग विष्णु का भजन करके जो लोग प्राप्त करते हैं उसमें क्या रखा है, वो तो काल के कल्पांत में जब प्रलय होगा तो नष्ट हो जाएगा। वैष्णव को अगर ध्रुव लोक मिल गया, ध्रुव को, तो वो भी नष्ट होगा। हालांकि ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता, वैकुंठ नष्ट नहीं होता, लेकिन इसकी बुद्धि तो असद है, इसलिए सोच रहा है कि वैष्णव का लोक भी नष्ट होगा तो क्या मतलब तपस्या करने से। तपस्या करके, साधना करके, उस लोक को प्राप्त करके इतना मर कर क्या करेंगे जब एक दिन नष्ट ही हो जाएगा, तो ध्रुव लोक भी मिट जाएगा, अतएव इसका क्या फल है। मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना पसंद करता हूँ, उसके दिमाग में ब्रह्मा जी अमर है, ये नहीं समझ रहा है कि ब्रह्मा से भी उत्कृष्ट पद ध्रुव का है। तो वैष्णव आदि भी, वैष्णव को जो प्राप्त होने वाली संपदा है वो भी नष्ट होने वाली। विष्णु से असत प्रवृत्ति के लोग जलते रहते हैं, उनको नहीं पसंद करते हैं, बाकी सबको पसंद कर लेंगे, देवताओं को पसंद करते हैं। जितने असत प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, वो कि तो शिव जी का भजन करेंगे, ब्रह्मा का करेंगे या दुर्गा का करेंगे। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का भक्त है और कंस दुर्गा का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था। तो इन लोगों को विषय भोग की बहुत कामना होती है। फिर कहते हैं कि इति सुषुम निर्बंध तपह परम आस्थित। तो ऐसा हम लोगों ने सुना है, इति सुषुम ऐसा हमने सुना है, निर्बंध परम आस्थिता। निर्बंधा का मतलब है इसका परम दुष्कर संकल्प, बहुत कठिन संकल्प। सभी आचार्यों ने निर्बंध पर लिखा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं निर्बंध प्रबल संकल्प, पक्का संकल्प, किसी काल में टूटेगा नहीं। इति तत् पदाहरणे तस्य निर्बंध सुषुमा। हमने ऐसा सुना है कि आपके पद का अपहरण करने के लिए, आपकी कुर्सी को छीनने के लिए ये इतना कठिन संकल्प किया है, निर्बंध किया है। और अतः ए असौ तप परम आस्थितो वर्तते यदत्र युक्तम तद अंतरम एवं विदत्स। इसलिए यह असौ तप परम आस्थित है, जो परम तप में स्थित है, तो इसको यदत्र युक्तम तद अंतरम एवं विदत्स। तो अंतरम, अंतरम कह रहे हैं बहुत जल्दी, ज्यादा देर मत कीजिए, बहुत जल्दी इसको इस तपस्या से हटाइए। और अगर आप ऐसा नहीं हटाते हैं तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। इसका संकल्प है आपके पद को लेने का। बंसीधर जी श्रीधर स्वामी की टीका पटीका लिखते हैं। बंसीधर पंडित हुए हैं, जो श्रीधर स्वामी की टीका तो सूत्र रूप में है, सूत्रात्मक। कुछ शब्द कठिन है तो उसी पर लिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखते श्रीधर स्वामी, आदि टीकाकार है। श्रीधर स्वामी टीका लिखने की एक दृष्टि दिया लोगों को, उनके बाद तो बहुत हजारों टीकाकार हो गए। इसीलिए महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी को आदर्श और आदि टीकाकार के रूप में स्वीकारा। स्वामी को जो ना माने से ही तो बेश्यार कहते हैं महाप्रभु, स्वामी है श्रीधर स्वामी, तो उनके टीका पर श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं। अतएव तत्पदाहरण संकल्पा देव निर्बंध, निर्बंध का अर्थ लिखते हैं निरुक्ति से, निर्बंधो बंध निर्मुक्तो हठे ज्ञानानि केशवे इति निरुक्ति ही। मनसिद्धर जी कहते हैं कि यहाँ निर्बंध का अर्थ है हठ पूर्वक, जिद पूर्वक कुछ को प्राप्त करना। कुछ भी हो जाएगा, चाहे कितना हो दुख हो, कितना हो संकट हो, लेकिन इसको प्राप्त करके ही मानूंगा। पक्का संकल्प, टेम्पररी नहीं कि रूटीन बनाया कल फेल भी कर दिया अपने से, एकदम पक्का। तो क्या ये चाहता है? तो श्रीधर स्वामी त्रिभुवनेश्वर का अर्थ करते हैं। त्रिभुवनेश्वर इत्युपलक्षणम्, इस श्लोक में त्रिभुवनेश्वर संबोधन भी है और त्रिभुवनेश्वर उसके संकल्प की योजना भी है। ब्रह्मा जी के लिए त्रिभुवनेश्वर संबोधन किए हैं कि स्वयं त्रिभुवनेश्वर, तो हे त्रिभुवनेश्वर, यह स्वयं त्रिभुवनेश्वर बनना चाहता है। आप सोच रहे हैं कि आप तीनों लोगों के स्वामी है ना, यह स्वयं बनना चाहता है। यदवा त्रयाणाम, त्रिभुवनेश्वर का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी, त्रिभुवनेश्वर मतलब जो हमने पहले बताया हो, नीचे के लोग, बीच का लोग, ऊपर का लोग। श्रीधर स्वामी बंसीधर जी कहते हैं ना ना वो नहीं, त्रिभुवनेश्वर का अर्थ है यद्वा त्रयाणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम भुवनानि यत्र तत्त्रिभुवनम ब्रह्मलोकैः शिवलोक वैकुंठ लोक उपदेशम विशेषम आपीति। त्रिभुवनेश्वर का अर्थ है ब्रह्मा का लोक तो लेना ही है, ब्रह्मा के राज्य में ब्रह्मा है एक पूरा 14 लोक, तो ये तो आएगा ही, एक लोक हुआ ब्रह्मा का लोक, और इसके ऊपर शिव लोक है। ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं देवी महेश हरिधाम सुते 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 ते प्रभाव निचया बिहता से जैन। ब्रह्मा जी सत लोक में ऊपर के लोकों का संकल्प करते हैं, तो इनके ऊपर देवी लोक है, इसके बाद महेश लोक है, और महेश लोक के बाद हरिधाम सुते सुते सु। हरिधाम अनेक है, इसलिए अनेकों हरिधाम, भगवान अनंत रूप में अपने धाम में रहते हैं अलग अलग स्वरूप में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्रिभुवन को कंट्रोल करने वाली देवी है सत्व रज तम की अधिष्ठात्री, जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा। ब्रह्मा जी अपने ऊपर के लोक को देवी लोक, देवी के बाद महेश लोक, महेश लोक के बाद हरि लोक, हरिधाम। तो ब्रह्मा जी के लोक का मतलब पूरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा है, ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा का ये 14 भुवन तो हाथ में आना ही है, इसके बाद महेश लोक भी, शिव का लोक भी, और फिर हरि लोक भी, वैकुंठ भी। तो कहते हैं कि यहाँ त्रिभुज भुवनेश्वर का अर्थ है कि यद्वा त्रयाणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम भुवनानि जत्र तत्त्रिभुवनम् ब्रह्मलोकैश्चैव शिवलोक वैकुंठ लोकौ प्रदेशम विषमाविति पुराणांतराम देवश्रेयम्। दूसरे पुराणों में ऐसा वर्णन है। अगर कोई कहेगा कि आप ऐसे क्यों लिख दिए, यहाँ तो किसी तीनों लोक का मतलब यह नहीं है, आप गलत अर्थ कर रहे हैं। तो बंशीधर जी कहते हैं नहीं है, दूसरे पुराणों में ऐसा चर्चा है कि वो ब्रह्मा शिव और विष्णु तीनों के लोक को लेना चाहता था। तो अधुना स्वयं त्रिभुवनेश्वर, इस समय तो आप त्रिभुवनेश्वर हैं, और आप त्रिभुवनेश्वर हैं केवल ब्रह्मांड के त्रिभुवनेश्वर हैं, नीचे बीच और ऊपर के लोग, लेकिन अपि अस्यो अपेक्षणे मेव सस्यादिति भाव, लेकिन यह तो आपके लोग को लेना चाहता है और इसके अतिरिक्त शिव और विष्णु के लोग को भी लेना चाहता है, इसलिए आप इसको अविलंब इस तपस्या से हटाइए। इसका तपस्या पूरा नहीं होना चाहिए, तपस्या पूरा हो जाएगा तो ये फिर संकट में डाल देगा सबको, इसलिए आप इसको हटाइए। यह कठिन तपस्या में जुटा हुआ है, आप जगत के स्वामी हैं, वर्तमान में तो आप त्रिभुवनेश्वर हैं, बाद में यही हो जाएगा, और आपका पद भी इसको छोटा लग रहा है, और ब्रह्मा और शिव और विष्णु को भी कब्जा में रखना चाहता है, यह स्थिति है। तो चक्रवर्ती ठाकुर भी बहुत कम करते हैं अर्थ, तत्पदाहरणे तस्य निर्बंधनम सुषुम, और विजय ध्वज निर्बंधनम असद आग्रहम, निर्बंधन का अर्थ किया है असद आग्रह, थर्ड क्लास अनित्य आग्रह के जिद में पड़ा हुआ है, इसलिए तपस्या कर रहा है। और निर्बंधन का अर्थ गिरधरलाल जी कहते हैं अभिप्रायम, इसका उद्देश्य जो है किसी तरह मिटने वाला नहीं है, आपके पद को छीनना चाहता है, इसलिए आप समर्थ हैं। त्वम अपि त्रिभुवनेश्वर सर्वथा तत्प्रतिकारे समर्थोऽसि, इसको अपने जैसा समर्थ मत बनने दीजिए, जब तक कमजोर है तभी तक इसको रोका जा सकता है, अगर वो अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप इसको जल्दी जितना आसु एव विधत् स्व, कहते हैं तो यद अत्र युक्तम तद अंतरम, अंतरम माने आसु एव, जल्दी जल्दी ही इसको हटाइए, जल्दी इसको हटाइए। तो प्रभुपाद जी केवल एक विषय को हाईलाइट किए अपने टीका में, कहते हैं कि भौतिक जगत में भोग चाहने वाले लोगों की प्रवृत्ति बहुत दूषित होती है, वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता है, अपने प्रति किए गए उपकार को याद नहीं रखता है, अपने प्रति किए गए उपकार को याद रखने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, और नहीं रखने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। सबसे बड़े कृतज्ञ श्री भगवान हैं, और इसके बाद उनके भक्त लोग हैं, वो कृतज्ञ होते हैं, बाकी संसार के लोग तो इतने कृतज्ञ हैं कि अपने स्वामी को भी शूट कर देते हैं, बॉडीगार्ड ही मार देता है, अथवा मंत्री नौकर ही राजा बनना चाहता है, वो घात खोजता रहता है कब अवसर मिले कि स्वामी को दबोच ले। तो प्राय यही होता है असद वासना वालों। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि इतिहास में बहुत से दृष्टांत हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीला में, चैतन्य साहित्य में हम देखते हैं कि एक नवाब हुसैन शाह नामक एक बहुत बड़ा शासक था, बंगाल उड़ीसा बिहार कई प्रदेशों का शासक था, बड़ा राज्य था उसका, उड़ीसा में केवल क्षत्रिय राजा थे, हिंदू राजा, लेकिन कुछ क्षेत्र उसके अधिकार में ही था। तो नवाब हुसैन शाह के विषय में कहते हैं कि वह बचपन में राजा नहीं था, बचपन में नौकर था एक जमींदार का, तो सुबुद्धि राय का नौकर था, तो कभी कभी नौकर गलतियां कर देते हैं, कभी कोई चोरी या कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो स्वामी कभी दो चार तमाचा लगा भी देता है। तो एक बार सुबुद्धि राय ने इसको बेत से पीटा था इसके गलती पर, तो उसके पीठ पर वो बेत का निशान था। बाद में जब वो नवाब हो गया, बहुत बड़ा शासक, तो एक दिन उसकी बीवी, उसकी पत्नी देख ली उसके निशान को पीठ पर, ये कैसा निशान है। तो संकोच में था, बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता दिया। बहुत जिद करने लगी तो इस सुबुद्धि राय जी ने मुझे पीटा है, उसी का निशान है। तो वो सुनकर बड़ा क्रोधित हो गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कहीं कि उसको तत्काल फांसी दे देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए, लेकिन वो कृतज्ञ था। कहा नहीं नहीं, वो हमारे हित के लिए किए थे, हमारे सुधार के लिए, इसलिए उनको फांसी नहीं देंगे, उनकी मृत्यु हत्या नहीं करेंगे। तो कही अच्छा, हत्या नहीं करेंगे तो उसका जाति ले लीजिए। सुबुद्धि राय ब्राह्मण थे तो उसको मुसलमान बना दीजिए। तो मुसलमान बनाने का बड़ा साधारण तरीका था कि जो हुक्का पीते थे उसके जो पानी होता है नीचे, या उस जूठा या पीने वाला पानी, सुराही या लोटा के पानी पीकर अपना जूठा पिला दिया तो जाति चली गई। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने पीने वाले बर्तन सुराही से या लोटे के जूठा पानी को पिलाया नहीं, छिड़क दिया। इतना हिम्मत नहीं कर रहा था, बेचारा कृतज्ञ था, लेकिन पत्नी के वशीभूत था, अब क्या करे। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट खिनाई। भीतर से तो नहीं चाहता था कि हम सुबुद्धि राय के साथ कुछ करें, तो अपना जूठा नहीं पिलाया, जूठा पानी उनके शरीर पर छिड़क दिया और हल्ला कर दिया कि सुबुद्धि राय आज से मुसलमान हो गया। मुसलमान हो गए, इनकी जाति चली गई। सुबुद्धि राय भी बेचारे बहुत कोशिश किए कि हमारी जाति ये प्रायश्चित कैसे करें। बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास गए। पहले पहले ब्राह्मणों की राजधानी नवदीप और काशी दो प्रसिद्ध राजधानी थी, बड़े बड़े ब्राह्मण रहते थे। तो नवदीप के ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि आपको खूब गर्म घी, एकदम जलता हुआ घी पीकर आत्महत्या कर लेना चाहिए, तब पाप से छुटकारा होगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा तो आपको शुद्ध जीवन मिलेगा। आ नहीं तो धान की जो भूसी होता है, छिलका धान का, उसका बड़ा अंबार जमा करके, बंगाल में तो धान बहुत पहले से होता है, उसमें आप राइस मिल के बाहर देखे होंगे वो भूसी, उसमें आग लगा दिया जाए और उसी में घुस आपको डाल देना चाहिए और धीरे धीरे जले, माने आग के लहकते हुए अंगार में तो जल्दी जल जाएंगे ना, तो भूसी के द्वारा शरीर को जला कर आत्महत्या करेंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, तब फिर शुद्ध जीवन मिलेगा। मतलब जीवित रहने में कोई उपाय नहीं है, मरना तो निश्चित है। तो एक व्यक्ति बदला दिया, वो ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव भी था। तो कहा कि क्या सुबुद्धि राय, तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हो, निमाई से पूछ लो, सारे पंडितों का लीडर है, वह जो बदलाएगा वो ठीक बदलाएगा, इन पंडितों में कुछ रखा है, दिग्विजयी को तो हरा दिया निमाई, निमाई सही बतलाएगा, उसके पास जाओ, वही ठीक प्राश्चित बताएगा। तो निमाई संजोग से वहां नहीं थे, वो काशी में थे, सन्यासी रूप में थे, काशी में सनातन गोस्वामी को उपदेश करने के लिए टिके हुए थे दो महीना। तो निमाई से मिलने के लिए सुबुद्धि राय काशी चले गए, तो मिले महाप्रभु से। महाप्रभु हंसने लगे कि उस प्रायश्चित से अगर आपको ब्राह्मण शरीर मिल ही जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, आप एक काम कीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, जन्म जन्मांतर का पाप नाम से पूरा हो जाता है, और आप शेष जीवन वृंदावन में बिताइए, आप ब्रज में चले जाइए। महाप्रभु तो ऐसे लोगों को खोजते थे वृंदावन के लिए, आप जाइए वृंदावन में भजन कीजिए, आपका दो काम, हरिनाम जप करना और बंगाल से आने वाले भक्तों का पोषण करना। बंगाल से कुछ भक्त आएंगे, उन बेचारों को रोटी मिलेगा ब्रज में, तो उनके लिए चावल का व्यवस्था करना, और कुंडों का पानी खारा है तो स्नान करने से त्वचा रोग हो सकता है, उनके लिए सरसों तेल की व्यवस्था करना, एक काम दिया। सुबुद्धि राय बेचारे जंगल से सूखा लकड़ी लाकर मथुरा में बेचते थे, और उसे जो पैसा मिलता था उसे चावल और तेल खरीद कर बंगाली भक्तों को देते थे। और उधर जाकर जप किया और कहे कि यह सबसे बड़ा प्रसिद्ध है। और केवल मैं ऐसे नहीं कह दिया भावुकता में, काशी में हम बैठे हैं, यहाँ किसी भी ब्राह्मणों से, पंडितों से, प्रकाशानंद सरस्वती से पूछ लीजिए ना, सब महाप्रभु के चेले हो गए थे। तो अब इतना फर्स्ट क्लास प्रसिद्ध बताए और भेज दिए वृंदावन। तो वही कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में ऐसा होता रहता है, स्वामी को भी सेवक हत्या कर देता है। तो यद्यपि यह तपस्या कर रहा है लेकिन है असत बुद्धि वाला, आपका सेवक है लेकिन इसकी बुद्धि में है कि मैं ब्रह्मा के लोक को ले लूं। तो यह ज्वलंत उदाहरण है, यह आपको जीत लेगा। और एक सिद्धांत है कि जो नीच प्रकृति के लोग हैं, असत विचार के लोग हैं, उनको उसी रूप में रहना शोभा देता है। अगर वे लोग कहीं भक्त रूप में, विनम्र रूप में दिखाई दे तो समझिए कि कोई खतरा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नवनी नीच की अति दुखदाई। कोई नीच प्रकृति का व्यक्ति अगर झुका है, त्रेणा तपी के सिद्धांत का पालन कर रहा है, तो खतरा करेगा। उसके नेचर में ही नम्रता नहीं है, नम्रता दिख रहा है। अगर कोई शेर झुक कर चल रहा है, सिर नीचे करके दब कर, तो समझना चाहिए कि वो किसी पशु पर खतरा करेगा। वो झुकने वाला प्राणी नहीं है, वो तो छाती सीना ऊपर करके चलता है। किसी गाय, किसी हरिण, किसी जीव पर हमला करने के लिए लगता है, उससे भी डर रहा है। उससे डर रहा है क्योंकि वो देख न ले, इसके लिए डर रहा है। झुक कर चलता है विनम्र होकर, और झुक कर अपने रेंज का पता लगाता है, कहां जाने पर उसको पकड़ लेंगे। तो ये बहुत कठिन काम होता है नीचों का झुकना। जैसे भागवत में कंस अपने बहन देवकी का रथ हाँकने लगा, देवता लोग टेंशन में पड़ गए, ये क्या करेगा, भगवान तो कृतज्ञ है, वो तो कृतज्ञ है नहीं, अगर ये उनके घर तक पहुंचा देगा तो भगवान इसको भूलेंगे नहीं कि हमारे माता पिता का सेवा किया था, इसको मार ही नहीं पाएंगे, ये तो महानीच है। और व्यवहार नम्रता का दिखा दिया, साधुता का, तो इसको बीच में रुकना जरूरी है, नहीं तो भगवान इसको मार नहीं पाएंगे। भगवान को याद हो जाएगा कृतज्ञ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है कि कृतज्ञ है। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। भगवान के कुछ खास विशेषता है जिसको जानना चाहिए, वो भक्त वत्सल हैं, कृतज्ञ हैं, समर्थ हैं और महान उदार हैं। ऐसे कृष्ण को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है। हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य, ऐसे कृष्ण को छोड़कर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे का भजन नहीं करेगा। और इसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि विज्ञ जन हर यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव अप्रमाण। अगर बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के गुणों का पता चल जाए तो सब कुछ छोड़कर कृष्ण का भजन करेगा। जैसे उद्धव जी प्रमाण देते हैं, कमवा दयालुम शरणम भजे म, अहो बकीय मुस्तन काल कूटम, जिघान सया पाए जदप्य साधवी, लेभे गतिम धातु सितांत तन्यम, कमवा दयालु शरणम भजे म। उद्धव जी कहते हैं कि कोई है ऐसा दयालु क्या जिसका भजन किया जाए, जो अपने स्तन में हलाहल विष लेकर आई थी, बकी बक्कासुर की बहन पुतना, उसका एक नाम बकी भी है, बक भाई था और बकी बहन थी, सहोदर भाई बहन थे बक बकी, तो सहोदर भाई बहन थे, तो बकी मतलब पुतना, तो स्तन में हलाहल विष लेकर आई थी मारने की नियत से, लेकिन भगवान ने यह विचार नहीं किया कि दूध लाई है कि विष लाई है, केवल उसके एक्शन को पसंद हो गए। जो माता का एक्शन प्रस्तुत किया, जसोदा और रोहिणी भी हतप्रभ हो गई, गोकुल की और स्त्रियां पुरुषों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो चकित थे ही, वो तो जानते थे कि लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर नंदलाल के दर्शन के लिए आ रही है। लेकिन जब नंद भवन में प्रवेश की तो रोहिणी और जसोदा, यद्यपि सभी स्त्रियों को नहीं देखने देती थी, किसी का नजर न लग जाए, भगवान शिव का प्रवेश ही नहीं होने दी जसोदा, तो दूसरे की बात क्या है, नजर न लग जाए हमारे बेटे पर, लेकिन जब बकी प्रवेश की तो हतप्रभ, कहाँ है लाला, कहाँ है लाला, इतना ड्रामा की वात्सल्य का कि जसोदा रोहिणी सोचने लगी मन ही मन की वास्तव में इसी स्त्री को इस बच्चे की माँ बनना चाहिए, वास्तव में माता का परफेक्ट क्वालिफिकेशन इसी के पास है, जो वात्सल्य होना चाहिए इसी के पास है। और गई और तुरंत आसन से उठा लिया, अरे मेरे लाला, चुमने लगी। रोहिणी जसोदा बोल ही नहीं पाई कुछ भी, मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अपने तरसने लगी कि इतना सौहार्द तो हमारे अंदर भी नहीं है। नित्य जननी माँ जसोदा को भी एक बार संभ्रम में डालने वाला ड्रामा, और जो पुतना प्रस्तुत की भगवान कहे कि अरे इसको तो गोलोक में स्थान मिलना चाहिए, बस केवल उसके एक्शन से प्रसन्न हो गए। नियत मारने का था, अलाहल विष लेकर आई थी, स्तन पकड़वा दी तुरंत, सोची टच करते ही मर जाएगा, लेकिन भगवान खुश हो गए, कहे कि चलो तुम्हारे स्तन के साथ तुम्हारे प्राण को भी पीता हूं। अब पीना चालू किए तो अब तो कष्ट होने लगा, रही छोड़ रहे लगी जीत तंग हो गई, लेकिन भगवान तो छोड़ना जानते नहीं, एक बार जिसको स्वीकार करते हैं उसको छोड़ते नहीं। तो जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, कुछ रेंज तक ले जाना पड़ता है प्रयास पूर्वक, साधन पूर्वक, जब वो पकड़ लेते हैं तब तो अपिच्छेद से दुराचारो भजते माम अनंत भाग, साधु रे व समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, और गलती कराए सही कराए कोई मतलब ही नहीं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखने में लगता है गलती, विष दंत निकाल दिया गया है, जैसे सांप फन मारता है और सपेरे लोग उसके विष दंत को निकाल देते हैं तो दूसरे लोग डरते हैं, वो नहीं डरता, जो विष वाला थैली है दांत है उसको निकाल दिया है। तो उसी प्रकार जो अनन्य भाव से कृष्ण के शरण में आता है उसकी पाप की प्रवृत्ति स्टॉप हो जाती है, ब्रेक लग गया है, ऐसे एक दो किलोमीटर तो ट्रेन चली ही जाएगी ब्रेक के बाद भी। तो नारद जी ब्रेक लगा दिए, इसको वाल्मीकि का क्या पूर्व नाम था, रत्नाकर को, लेकिन आश्रम में आने पर भी अभी पूरा ब्रेक नहीं लगा था, इसलिए यहाँ का तुमड़ी वहां करता रहा कुछ दिन, कभी सोए अवस्था में साधुओं की तुमड़ी बदलते थे इधर उधर कमंडल, लेकिन बाद में रुक गए, मिर्गारी को भी ब्रेक लगा दिए नारद जी। तो इस तरह से सीध धीरे दिखता है लेकिन वो खत्म हो चुका है। तो भगवान अपने भक्तों की गलती पर विचार ही नहीं करते, वो अपने शरण में ले लेते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सौबार ही एक, अपने भक्तों की गलती पर विचार ही नहीं करते जब अपने शरण में लेते हैं। तो जब भगवान किसी जीव को ले लिए तो एक गलती पर नहीं, ये विष लेकर आई है कि क्या लिया है कुछ ध्यान नहीं, धात्री गति दे दिए, इसको कह रहे हैं उद्धव जी कमुआ दयालु शरणम ब्रजेम, इतना बड़ा दयालु कहीं देखे हो नहीं, बिल्कुल नहीं, चैलेंज पूर्वक कहते हैं, इसलिए इनका शरण लेना चाहिए। कमुआ दयालु शरणम ब्रजेम, इससे बढ़कर कौन दयालु होगा जिसका शरण लिया जाए, कोई नहीं है। इसी प्रकार गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी, कि हमारे जैसा बोस कोई नहीं मिलेगा, हमारे स्वामी जैसा, भगवान राम जैसा स्वामी कहीं मिला है, प्रभु तरु तर कपिटार पर तेहि किए आप समान, तुलसी न कहु राम सो साहिब सिर निधान। कहते हैं कि अगर साहब के बोस के कुर्सी पर कोई नौकर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन हमारे साहब पेड़ के नीचे बैठते हैं और सेवक बंदर पेड़ के ऊपर। प्रभु तरु तर कपिटार पर तेहि किए आप समान, और सुग्रीव जी को बराबर आसन पर ध्यान बैठाए, कहे हमारे मित्र हैं, इनके सहायता से मैंने दशानन पर विजय प्राप्त किया। वशिष्ठ जी से परिचय देते हैं, हमारे मित्र हैं, कैसा मित्र, बंदर, कहते बराबर आसन पर, तो तेहिए आप समान, अपने बराबर कर देते हैं, ऊंचा नीचा का व्यवहार ही नहीं भगवान में। तो कहते हैं तुलसी न कहूं राम सो साहिब सिर निधान, तुलसीदास कहते हैं कहीं नहीं ऐसा साहब मिलेगा सील निधान सहनशील, वो जानते हैं अपने भक्तों की कमी को। तो विज्ञ जने रहे यदि कृष्ण गुण ज्ञान, किसी बुद्धिमान को कृष्ण के गुणों की जानकारी हो जाए तो सर्व तज भजे ताते उद्धव प्रमाण, सब कुछ छोड़कर भजन करेगा। भगवान शिव भी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तज भाव न आना, लोग क्यों नहीं भजन करते हैं, क्योंकि भगवान के स्वभाव को जानते हैं नहीं। हे उमा, अगर भगवान के स्वभाव को जो व्यक्ति जान जाएगा ना, सब छोड़कर उनका भजन करेगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भावना ना, उसको कुछ दूसरा अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए भगवान के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। तो उनका स्वभाव क्या है कि वो कृतज्ञ है। कोई एक बार भी प्रणाम कर दिया, भूल से भी आकर मंदिर में, तो उसको याद रखते हैं कि इसने प्रणाम किया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सकृत एव प्रपन्नो ज तवास्मिति जयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तत्प्रथम मम। कोई एक बार मेरे पास आकर प्रणाम करता है, कहता हे श्री राम मैं आपका हूं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं भय से मुक्त कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, साधारण कप नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा है, उसको भय से मुक्त कर देता हूँ। प्रकट हुई जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अघनाश ही तमहि। ज्यों ही जीव आकर मुझको प्रणाम करता है, जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त, अब नरक नहीं जाएगा, भय से मुक्त। तो यह है भगवान का स्वभाव। तो इस स्वभाव को भक्त लोग जानते हैं, तो देवताओं को पता चल गया कि भगवान कंस के कृतज्ञता को याद रख के मारेंगे नहीं, इसलिए बीच में बतला दिए कि अरे मूर्ख कंस, इसी देवकी का आठवां संतान तुम्हारा वध करेगा। तो उस काम से रोक दी, उसका स्वभाव भर गया, तुरंत तलवार निकाला, चोटी पकड़ लिया। यह ओरिजिनल स्वभाव था। आज जो रथ चलाना था वो बनावटी स्वभाव था, और नव निमीच की अति दुखदायी, वो कष्टकारक था। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के तपस्या इसके ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है। यह तो आपको भी पराजित करना चाहता है, आपका पद लेना चाहता है, इसलिए आप इसको रोकिए, यह तपस्या पूरा न कर सके। लेकिन स्वामी लोग इतने अबलाइज हो जाते हैं सेवक से कि इतने चेतावनी के बाद भी ब्रह्मा जी भूल रहे। आए आगे वर्णन आया कि ब्रह्मा को बतला रहे, तवासनम द्विजा गवम, आपका आसन मिलेगा आगे का श्लोक में, पारमेष्टम जगतपते, हे जगतपते क्या क्या लेना चाहता है, ये आपका आसन लेगा, आपका गायों के लिए ब्राह्मणों के लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगा, जब परमेष्टी पद पर बैठ जाएगा तो कहीं कल्याण नहीं है, इसको रोकिए रोकिए। तब ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषियों को लेकर गए मंदराचल में, कमंडल का जल छिड़के, जल शरीर तो पूरा समाप्त हो चुका था, केवल हड्डी में प्राण था, दीमक लग गए थे, चींटियां खा गई थी, ऊपर जल रहा था, लेकिन ब्रह्मा कहते हे कश्यप नंदन बोलो क्या चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सारा शरीर ठीक कर दिए और कश्यप नंदन बनाने लगे योजना, क्या मांगू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, जहां जहां मरने की संभावना थी सब जगह रोक लिया, पूरा बाउंड बना दिया। और ब्रह्मा जी को थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा वरदान क्यों मांग रहा है, ये अमर होकर क्या करेगा, माला जपेगा भागवत पढ़ेगा क्या करेगा, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था। लेकिन तपस्या से इतने प्रभावित है, तथास्तु, अब तो अमर हो गया, अब लगा जब तंग करने तब ब्रह्मा की बुद्धि चकराने लगी। शिव जी से भी ऐसा भूल होता है, रावण को वरदान दे दिए, बिकासुर को वरदान दे दिए, उन्हीं के सिर पर हाथ रखने चल दिया, तो दोनों को डांट पड़ी है। ब्रह्मा जी को नृसिंहदेव डांटे कि ऐसा वरदान मत दिया कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि चार चार माथा बना है सोच रहे जिसकी एक माथा है वो भी सोचता है आपका चार चार माथा काम नहीं किया, आप थोड़ा तो सोचिए। और शिव जी को भी डांट पड़ा विकास के समय, ऐसा वरदान मत दिया कीजिए। तो इस तरह सेवक के प्रति लोग प्रभावित हो जाते हैं, चलो सेवक है इतना भजन किया तो दे ही देते हैं, आगे पीछे क्या होगा विचार ही नहीं करते। तो इस प्रकार हमको तो यहाँ लिखा गया है, टाइम पर बंद कीजिए, उसमें प्रश्नोत्तर भी सम्मिलित है, और मैंने ज़्यादा समय ले लिया, इसलिए क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री। तो कोई जिज्ञासा हो दो चार मिनट तो कर सकते हैं, देर तो हो ही गया है।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बहुत सुंदर तरीके से अभिनंदन किया। अभी मेरे एक प्रश्न था, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जब कंस वासुदेव देवकी को लेकर जा रहे थे तो देवी देवता परेशान हो गए कि अगर वो पहुँच गए तो भगवान इतने कृतज्ञ हो जाएंगे कि उसको मारेंगे नहीं। तो इससे समझ में आता है कि उन्होंने वो आकाशवाणी हुई और कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं इसी प्रसंग में प्रभु जी कि हम जब आगे जाके वासुदेव कहते हैं ठीक है मैं हर एक पुत्र को ले आऊँगा, आप उसको मार दीजिएगा, और जो पहले पुत्र को लाते हैं कंस इतना प्रभावित हो जाता है कि मारने से मना कर देता है। फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि जो है एक तरीके से उनको भड़काते हैं कि ये तो सब देवी देवता हैं, और उसके बाद फिर वो मारना शुरू हो जाता है।
अच्छा तो सुनिए,
तो ऐसा
ऐसा उसके ओरिजिनल स्वभाव में रखना देवता लोग भी चाहते हैं, नारद जी भी चाहते हैं। जब उस समय रथ चला रहा था तो देवताओं को चिंता हुई कि इसका नवनी नीच की अति दुखदायी, और ज्यादा दुख देगा जीवित रहेगा तो। वैसे नारद को भी टेंशन हो गया, जब दया करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान याद करेंगे मेरे भाइयों को तो बहुत सम्मानपूर्वक छोड़ दिया, पिताजी तो ले गए फिर भी छोड़ दिया। तो उसी पथ में नारद जी भी आए कि यह अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहे तब इसका वध जल्दी होगा। अच्छा वहीं तक नारद जी किए, उसके भगवान के छह भाइयों के मारने के बाद भी अभी भगवान मारने नहीं आ रहे हैं। तब तो नारद जी को और टेंशन बढ़ गया कि अब क्या करें इसको। तो जाकर बतलाए कि कंस तुमको पता नहीं है देवकी का आठवां पुत्र तो नंद भवन में है, वो नंद भवन में है। देखिए अब यह सुनने पर लगता है कि नारद जी झगड़ा लगा रहे हैं, कंस को उत्प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन नारद जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसा कैसे नंद भवन में कैसे चला गया, कहते वसुदेव जाकर उनको पहुंचा दिया है और उसके बदले में लड़की लाकर तुमको दिखाया गया, वो सब झूठा। तो लड़की जसोदा की थी। तो कौन से एकदम क्रोधित हो, बुलाओ वसुदेव को, अभी उसको मारूंगा। वसुदेवा का इतना हिम्मत मेरे साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वसुदेव के पास इतना ताकत है। तो वसुदेव को जब बुलाने लगा तो नारद जी कहे क्यों इस तरह की मूर्खता करते हो, वसुदेव जैसे हजारों को मार दोगे तो क्या तुम अमर रहोगे, पक्का मरोगे और उसी के हाथ से मरोगे। ये भी कह रहे हैं भागवत, देखिए निश्चित मरोगे कृष्ण के हाथ से। वसुदेव को मारने से उधर टाइम बर्बाद करने दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, तब क्या करना चाहिए देवर से, समझ रहा है कि हमसे हमारा सबसे बड़ा हितैषी बोल रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं वास्तव में हितैषी है, ज्यादा पाप करता तो और ज्यादा दुख लोगों को देता और इसकी भी दुर्गति होती, इसलिए भगवान के हाथ से मरवा कर उसका हित ही करना चाहते हैं नारद जी। तो नारद जी कभी अहित नहीं करते। भागवत में कहा गया कि देवता लोग नाराज हो जाते हैं तो जीवों को दुख देते हैं, लेकिन महात्मा कभी नाराज भी होकर दुख नहीं देते, उसके हित पर विचार करते हैं। नल कुंवर मणिग्रीव इतना अपमान किए लेकिन बिना तपस्या के वरदान दे दिए कि तुमको वासुदेव की सानिध्य प्राप्त होगा। तो इस तरह नारद जी प्रेरित किए और कहे कि एक काम करो, कृष्ण भगवान को यहीं बुला लो। देखिए उसके दिमाग, जब मृत्यु दूर है तो ठीक है ना। तो नारद जी सलाह दे रहे हैं कि बुला लो, और तो बुला लो तो सोच ही नहीं पाया, कहने लगे तुम्हारे एक पास एक से एक चारों मुष्टिक कोलया पेड़, इतने बड़े बड़े पहलवान, मैंने सब पृथ्वी के भार हैं, सबको मरवा दो भगवान। नारद जी के मन में है कि ये भी बचे खुचे हैं, कुछ लोग तो जा कर मर ही गए, बाकी लोग जा नहीं रहे हैं तो एक थोक भाव में मरेंगे, आप बुला लो और इनका एक यूज कर लेना, प्रयोग कर लेना सबको, पहले उन लोगों के मरने के बाद तुम भी मरोगे, मन में तो यही है लेकिन कह रहे हैं कि बुला लो। और कौन समझा कि वाह देवर्षि नारद फर्स्ट क्लास उपाय बताए, बुला लो। तो नारद जी भी तो यही चाहते हैं कि ये मरे, इसीलिए उसको वहां भी रोके कि बच्चों का छोड़ दिया तो फिर भगवान में कृतज्ञता ना आ जाए, बड़ा अच्छा व्यवहार किया, साधु व्यवहार किया। तो उसका साधु व्यवहार शोभनीय नहीं था, दुष्ट था, उसको मरना जरूरी है। ठीक है ठीक, अच्छा
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जैसे बोलिए हम समझते हैं कि भगवान जो है भाव भावग्राही जनार्दन, लेकिन जैसे पूतना गई थी उसका भाव ठीक नहीं था, वहां भगवान को मारने के लिए गई थी, ऐसी हमारे भाव ठीक नहीं होंगे लेकिन हमारी क्रियाएं क्रिया होंगी तो उसको।
लेकिन भावग्राही तो भगवान है, अगर भाव की ही बात रहता तो कर्म योग का क्या, एक्शन का क्या मतलब है। कर्म का भी महत्व है ना। अगर भाव की ही बात है तो देवती जी कहते हैं अहो बत स्वपचतो गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुष तपस्वी जीवसनुआजा ब्रह्मानुचर नाम गृणंती जय थे। कहते अहो आश्चर्य है जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम उच्चारित हो रहा है वह स्वपच भी चंडाल भी कुत्ता का मांस खाने वाला भी बड़ी गरियान सबसे श्रेष्ठ है। मन से नाम पर विचार कर रहा है कि नहीं, मन किधर घूम रहा है नहीं कह रही है, केवल ऊपर ऊपर जिह्वा के अग्र भाग पर नाम आ रहा है तो वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। उसने तपस्या कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, सबसे बड़ा साधक है और बहुत श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ क्रिया का महत्व है ना, क्रिया भक्ति योग में क्रिया का महत्व है। और भावग्राही जनार्दन, भाव तो सोचते, यही तो अर्जुन का तीसरा अध्याय में प्रश्न है गीता में कि आप एक तरफ बुद्धि योग की बात करते हो और मुझको घोर युद्ध में लगा रहे हो। तो बुद्धि योग तो मन में सोचना है कि अच्छा है क्या बुरा है, बस फर्स्ट क्लास, उसमें कुछ करना क्या है, सोचते रहेंगे तो आप ये कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। तो भगवान बतलाते हैं कि दोनों एक ही अर्थ है, क्रिया के द्वारा भी हमारी संतुष्टि होना चाहिए और बुद्धि के द्वारा भी। तो कहने का मतलब है कि उसका एक्शन जो था, क्रिया जो माता जैसा व्यवहार की, वो बड़ा आकर्षक किया भगवान को। उसके नियत को तो भगवान जानते थे, नियत को जानते थे, इसलिए आँख बंद कर लिए। आंख भगवान उसके आने घर में घुसने से पहले आंख बंद कर दिए, सोच रहे थे कि देख लूंगा तो इसका माया काम नहीं करेगा। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, दृष्टि पड़ते ही पुतना की माया फेल कर जाएगी, तो आगे लीला करना है इसलिए आंख बंद कर लिए। आचार्यों ने बहुत उत्प्रेक्षा की है कि भगवान सोचने की कि पुतना जैसी पापिनी मेरे यहाँ कैसे आ गई, क्या पूर्व जन्म में कुछ तपस्या की थी, आंख बंद करके मानव समाधि में भगवान सोच रहे हैं। एक टीकाकार लिखते हैं कि भगवान आंख बंद करके भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, गोलोक छोड़कर आया माखन मिश्री खाने की, यही 20 दिन है, छठवा दिन विष आ गया, तो आप हलाहल पिए समुद्र का निकला हुआ, इसको भी पी लीजिए, मुझको चैन से रहने दीजिए, शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान मन ही मन उसके भावों को देख लिए और उसकी मानसिकता भाव भी जो पूर्व जन्म का था वो भी था कि एक बार भगवान को बेटा बनाना चाहिए, बाद में इसको क्रोध हुआ, जो भी सब कुछ पर विचार करके भाव से दूषित थी उस समय, तो दुष्टता थी, लेकिन एक्शन का भी महत्व है। अगर भाव का ही महत्व रहता तो हमारा नाम जब तो व्यर्थ हो जाता, हमारा भाव तो कृष्ण में है नहीं, और रोज अपराध ही कर रहे हैं, लेकिन अपराध युक्त नाम का भी बहुत भारी महत्व है। ऐसा नहीं, नाम अपराध तो होता है, दसवां नाम अपराध तो सबसे होता है, असावधानी पूर्वक हम नाम जप कर रहे हैं, अथवा हमारी विषया शक्ति मिट नहीं रही है फिर भी माला जप रहे हैं, तो ये व्यर्थ हो गया। यही नाम अपराध ही शुद्ध नाम के बेस है, धीरे 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 शुद्धता में लाएगा, इसलिए क्रिया का महत्व है। तो उसका एक्शन महत्वपूर्ण हो गया, हर समय भाव ही नहीं होता है, यद्यपि भगवान भावग्राही तो है ही, यह नहीं कहा जा सकता कि भाव को भगवान नहीं देखते, लेकिन एक्शन को भी देखते हैं। हरे कृष्ण। क्या
रुजी, आपने बताया जब तक एक व्यक्ति पूरी तरह भगवान का स्वभाव नहीं जान पाता तब तक वो पूरी निष्ठा से भगवान के भजन में नहीं लग सकते। तो ये स्वभाव जानना एक बात है या उसे रियलाइज करना?
रियलाइज करना, अनुभव करने लगता है, वही ज्ञान का जो प्रैक्टिकल रूप है वही है रियलाइजेशन, समझने लगता है। भगवान सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानम, अपने जीवन में भी उनके सौहार्द का अनुभव करता है। ऐसे तो हमको पता नहीं है कि माता के गर्भ में कैसे हमारा पालन हुआ, निश्चित रूप से माँ को भी पता नहीं है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि हमारे सौहार्द से वहाँ पालन होता है, माता के स्तन में दूध भी हमारा ही सौहार्द का रिजल्ट है, सबके तक नाकों तक ऑक्सीजन का सप्लाई मेरा सौहार्द है, इसके लिए कोई दुकान बिजनेस नहीं है। तो मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, सब मैं करता हूँ लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं है। तो इसका अनुभव जब अपने जीवन में हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि भगवान के विषय में खूब पढ़ाई लिखाई करें तो एक दिन वो ज्ञान आ जाएगा। भक्ति करते करते वो ज्ञान आने लगता है स्वाभाविक, श्रवण कीर्तन करते करते भगवान के विषय में ज्ञान होता है, भक्ति करते हैं तो रियलाइजेशन भी होता है, ज्ञान होता है। तो यह नहीं कहा गया, मैं ये नहीं कहा कि बिना ज्ञान अर्जन किए निष्ठा नहीं होगी। तो यह कहा गया है कि यदि विघ जनर है, यदि कृष्ण गुण ज्ञान, यदि कृष्ण की जानकारी हो जाए तो सर्व तजि भजे ताते उद्धव कुमार, सबको छोड़कर वह भजन करेगा, जैसा कि उद्धव जी ने कहा है। यहाँ यदि शब्द लगा रहे हैं, अच्छा उमा राम स्वभाव जिन जाना, जो जान जाएगा तो वो भजन करेगा। इसका मतलब कि बिना जाने भी लोग करते हैं, जान जाने पर पक्का एकदम, ऐसा नहीं है कि बिना जाने नहीं करेंगे। जीव गोस्वामी तो कहते हैं कि जानने की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि स्थाने स्थिता तनवा वनो भी, स्थान में अपना स्थित होकर ज्ञान ज्ञाने प्रयास मुदपास नमनत एव, ज्ञान का प्रयास दूर से छोड़ दे और विनम्रता पूर्वक केवल भजन करें, और भजन में भजन सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रीवंती जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपके विषय में सुनकर जीवन जीता हो। वह व्यक्ति भगवान अजीत को जीत लेता है, जो सबको जीते किसी से हारते नहीं उस भगवान को भी अपने वश में कर लेता है, यह कहा गया है। तो ज्ञान का प्रयास, जीव गोस्वामी इसकी टीका में कहते हैं कि कैसे सृष्टि हुआ, कैसे भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज्योग्राफी, इसकी जानने की कोई जरूरत नहीं, अथवा सृष्टि विषय ज्ञान की जरूरत नहीं। भगवान की जो ब्रज की मधुर लीलाएं हैं गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, माता यशोदा के साथ, इसको ही केवल सुने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। जीव गोस्वामी पर उत्पास्य का दूर से छोड़ने का टीका में लिखते हैं जीव गोस्वामी। हरे कृष्णा।